हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
जगद्गुरु जलगोपाल की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 12, 13 और 14 ये तीन श्लोकों की चर्चा करने का प्रयास करेंगे।
तस्य संजयन हर्षम कुरु भूद्धा पितामह सिंहनादं विनोद्यौश्चै शंखं दद्मो प्रतापवान।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय।
तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय।
कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे।
श्लोक संख्या 13।
तथा शंखाश्च भैर्यश्च पणवा नतको मुखा सहसैवाप्य हन्यन्त सशब्दस्तुमलो अभवत्।
तत्पश्चात शंख नगारे बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था।
श्लोक संख्या 14।
तथा श्वेतेर हरे युक्ते महति चंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंको प्रदद्मतु।
दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर असीम कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय।
विष्णुदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडव पुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जयस्तु की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान है वही वही लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोगों ने जहाँ कहा भी यह जाएगा वहाँ विजय निश्चित है।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं जाग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं भावदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शीर्षाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते।
सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्लोकोपाद की जय। श्लोक संख्या 1 से 11 तक हमने जो चर्चा की है उस चर्चा में हमने परिचय इस विषय को भगवद गीता का लगभग थोड़ा बहुत परिचय उन 11 श्लोकों में चर्चा किया गया है। इन 11 श्लोकों में हमने ABCD को समझने का प्रयास किया, चर्चा करने की प्रयास की है। ABCD में फॉर बिफोर बुक, बिफोर भोजन प्रसाद। तो 1 से 11 तक हमने ABCD का चर्चा किया है। ABCD पे कुछ विशेष चर्चा हुई है और इनको अप्लाई कैसे जीवन में करना चाहिए इसकी चर्चा हुई है। अभी 12वें श्लोक से तो 20 तक 1.12 to 1.20 1.11 से 1.20 ये दो 1.12 से 1.12 से 1.20 अर्थात ये श्लोक आज 9 श्लोक थे। इसमें हम चर्चा करेंगे कि पांडवों के विजय की शुभ चिन्ह है ना। कभी कभी हमको पहले कुछ चिन्ह दिख जाते हैं, अच्छा होने वाला है कि बुरा होने वाला है ना। रास्ते में चल रहे बिल्ली रास्ता काट दी तो क्या बोलते हैं, चिन्ह मिल गया। रास्ते में चल रहे कोई भक्त का दर्शन हो गया सुबह सुबह, अच्छा शुभ शकुन है ना। तो ये जो 9 श्लोक है इसमें पांडवों की विजय होने वाली है इसके शुभ चिन्ह की चर्चा होगी, किस प्रकार से ये लक्षण है और उनकी चर्चा इस पे हम करेंगे। तो पहला जो श्लोक है अर्थात 1.12 तस्य संजय हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योश्चै शंखम दत्मो प्रतापवान, इस श्लोक की हम चर्चा करेंगे। इसमें अभी तक हम क्या देख रहे थे प्रभु जी, 11वें श्लोक तक हम क्या देख रहे थे, हम सुन रहे थे कि चर्चा हो, ओनली डिस्कशन। 11वें श्लोक तक देयर वाज ओनली डिस्कशन, सब चर्चा ही हो रही थी। अभी इस श्लोक में हमको एक्शन दिखाई दे, अभी तक चर्चा हो रही, अभी क्रिया होगी, एक्शन। तो एक्शन क्रिया अर्थात क्या क्रिया होने वाली है, कौन शुरू करने वाला है ये क्रिया, गुरु रुद्ध, गुरु रुद्ध पितामह, गुरु वंश के वयो वृद्ध परम प्रतापी भीष्म पितामह, ये एक्शन लेंगे। इनसे क्रिया शुरू होगी, एक्शन की शुरुआत होगी। तो भीष्मदेव भीष्म पितामह का निर्देशन दुर्योधन के लिए इस श्लोक में है। द्रौपदी महाराज तात्पर्य में बहुत अच्छे से हमको समझाए हैं कि किस प्रकार पितामह भीष्म दुर्योधन को हर्षित करने के लिए शंख बजाते हैं। इसकी चर्चा इसमें श्री द्रौपदी जी ने तात्पर्य में कहा है। द्रौपदी कहते हैं दुर्योधन भीष्म पितामह के कौन है, ग्रैंड सन, पौत्र है ना। सो निश्चित ही है कि कुछ आपस में कुछ प्रेम भाव होगा, नहीं कुछ वात्सल्य होगा। दादाजी पर दादाजी इनको बहुत ज्यादा वात्सल्य होता है। अभी इसके पहले दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से बात की थी, बहुत लंबी बात की,
वो कुछ भी नहीं बोले
कुछ बोले वो,
उन्होंने शंख भी नहीं बजाया, कुछ भी नहीं किया। वो समझ गया कि मुझे ये क्या है, दुर्योधन बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है।
तो ये चुपचाप बैठे रहे,
वो सुनते गए सुनते गए सुनते गए, बस कोई एक्शन ही नहीं किया। परंतु पितामह है ना, ये तो भीष्म तो पितामह है, इनको तो अपने पौत्र के पति थोड़ा वात्सल्य होगा। और देख रहे थे कि दुर्योधन बहुत भयभीत है, उनको बहुत भय है, बड़े उद्विग्न है, आवेग्न है और भयभीत भी है। दुर्योधन हर्षित नहीं था, भीष्म पितामह ने शंख बजाया तब वो हर्षित हुआ। क्यों नॉट हैप्पी, जैसे अभी तक अर्जुन या पांडव कुरुक्षेत्र में आए हैं बहुत प्रेम से और बड़े उत्साह से उपस्थित है, वो सभी किसी प्रकार का भय उनके मन में नहीं था। श्री गोपाल जी तात्पर्य में इसका कारण बताते हैं, क्या कारण बताते हैं तात्पर्य में, कि हमने ध्यान से सुना होगा। तो भय का कोई कारण नहीं था पांडवों के पास, पांडव भयभीत नहीं थे, इसलिए उनकी ओर से किसी ने शंख नहीं बजाया भय को दूर करने के लिए। परंतु दुर्योधन भयभीत था और ये पितामह जान गए, इसलिए पितामह ने सर्वप्रथम शंख बजाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दुर्योधन को प्रोत्साहित करने के लिए भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना, सिंह की जैसी गर्जना की। जब सिंह गर्जना करते हैं तो क्या होता है, सिंह की गर्जना से हाथी जैसे बड़े बड़े प्राणी जो जंगल में होते हैं वे भी भयभीत हो जाते हैं। तो सिंह जैसा नाद, सिंह सी गर्जना भीष्म पितामह ने की, जिसके कारण सभी के मन में उत्साह उत्पन्न हुआ, पूरी सेना के मन में उत्साह हुआ, विशेषकर दुर्योधन का भय दूर हुआ, अर्थात दुर्योधन भयभीत था, ये पांडवों के लिए शुभ चिन्ह है। दुर्योधन भयभीत था ये पांडवों के लिए शुभ चिन्ह है कि नहीं। तो इस श्लोक में पहला शुभ चिन्ह है जिससे यह प्रतीत होता है कि पांडवों की विजय होने वाली है, क्योंकि कौरवों का जो प्रमुख है अर्थात दुर्योधन वो पहले ही से भयभीत है। जो भयभीत है वो गया, भय व्यक्ति को नष्ट कर देता है, भय व्यक्ति को आवेग में लाता है, भय व्यक्ति को नष्ट कर देता है, भय व्यक्ति के संपूर्ण पर्सनालिटी को, पूर्ण व्यक्तित्व को डिस्ट्रॉय कर देता है, भय मन को कमजोर बना देता है, भय मन को बुद्धि को अपवित्र अस्थिर बना तामसिक बना देता है, और भय मनुष्य के बड़े से बड़े रोग का कारण है। सो भय, भय जो है भय नहीं होना चाहिए। यदि हमारे पास भय है तो हमको शत्रु की आवश्यकता नहीं है। भय होने से हमारा पराभव निश्चित है, हमारा सांसारिक जीवन में पराभव निश्चित है, हमारा आध्यात्मिक जीवन में पराभव निश्चित है। हम जिस स्थिति में है उस स्थिति में हमारा पराभव निश्चित है यदि हम भयभीत है तो। दुर्योधन भयभीत है तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पांडवों की विजय निश्चित है। तो ये पितामह जान गए, इसलिए उन्होंने शंखनाद किया। अब पितामह ने ये क्यों इस प्रकार से शंखनाद किया और उनके इस शंखनाद को सिंह जैसा क्यों कहा गया है, सिंहनाद क्यों कहा गया है, क्योंकि पितामह पितामह है। पितामह का जो शौर्य है, उनके पास जो वीरता है, उनके पास जो ज्ञान है, उनके पास जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, यह सब जब कोई समझे विशेषकर शत्रु पक्ष तो भयभीत हो जाएगा, शत्रु भयभीत हो जाएगा। जो भक्त है वो भक्त उत्साहित हो जाएगा,
भीष्म पितामह के शंख के नाद से भक्त उत्साहित हो जाएगा, क्योंकि वह भी बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। वो कर्तव्य परायण ही द ब्यूटीफुल, कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आप सभी भीष्म पितामह के बहुत ही बड़े अनुयायी कह सकते हैं या फॉलोअर कह सकते हैं, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है लेकिन आप फिर भी अपने कर्तव्य के प्रति दक्ष है। सब आ गए हैं, दूर दूर से आए हैं माता जी, कोई मलाड से आए, कोई थाना से आए, कोई विरार वसई से आए हैं। सो विशेष बात यह है कि आप इस भगवद गीता के जो भगवान के जो दिव्य शब्द है और उन भगवान के जो दिव्य भक्त इसमें है, विशेषकर भीष्म देव, निश्चित ही आप इस सेवा भाव से और इस भगवत भाव से प्रसन्न होंगे और वो आपको भरपूर आपके ऊपर कृपा प्रदान करेंगे। तो इज वेरी ब्यूटीफुल भगवान भीष्म पितामह कर्तव्य दक्ष है और उनको दोनों के प्रति प्रेम है, वात्सल्य है, कौरवों के भी प्रति है, पांडवों के भी प्रति है। अब इस स्थिति में वो ये देख रहे हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है। सो कर्तव्य परायणता है। भीष्म पिता ने हमको सिखाया है, हमने पहले भी कहा है, भीष्म पितामह ने हमको क्या सिखाया है बोल सकता है कोई? पहले के श्लोक में हमने चर्चा की थी क्या सिखाया है? संयम और आत्मविश्वास और कर्तव्य परायणता, कर्तव्य निष्ठा और मैं बताऊं आर्ट ऑफ डाइंग, हाउ टू डाई। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग तो सब जानते हैं, जो अबाधित सत्य है जो हम सबको फेस करना है डेथ, वो आर्ट ऑफ डाइंग क्या है? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आर्ट ऑफ डाइंग भीष्म पितामह ने बताई है, हमने इसकी चर्चा की, आपको कुछ स्मरण हो रहा है? प्रो फ्लैशबैक, विष्णु सहस्त्र नाम का श्लोक हमने बताया था, आ गया स्मरण? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भीम अर्जुन और कृष्ण भी आनंदित हो गए विष्णु पितामह ने शंख बजाया, क्योंकि जो भक्त होते हैं वे भी आनंदित हो जाते। शंख ये जो है भगवान कृष्ण का प्रतीक, शंख चक्र गदा पद्म, तो शंख यह मंगलदायक है, शंख यह भगवान का प्रतीक है, इसलिए जब शंख ध्वनि बजता है तो भक्त उल्लासित होते हैं, उत्साहित होते हैं और राक्षस भयभीत होते हैं। राक्षस अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति, जब मंदिर में आते हम यदि शंख सुनते हैं, शंख ध्वनि शंखनाद को हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर जो राक्षस छिपे हुए थोड़ी देर के लिए भयभीत हो जाते हैं, क्या बच गया अचानक, ये कहाँ आ गया, ये मंदिर में आ गया क्या? तो वो अंदर की जो राक्षस है कांपने लग जाते हैं थोड़े क्षण के लिए, जब मंदिर के शंख के ध्वनि को हम श्रवण करते हैं। तो शंख इज वेरी ऑफिशियल, परंतु दुर्योधन जो है, दुर्योधन के अंदर, दुर्योधन के मन में भय है, और भय का कारण क्या है? भय का कारण है दुर्योधन कुछ चाहता है। भय क्यों आता है? हम क्यों भयभीत होते हैं? Why? क्यों डर आता है? क्यों डरते हैं? क्यों निर्भय नहीं है? Why we are not happy? उसका उत्तर, उसका दूसरा प्रश्न है, हम आनंदित क्यों नहीं हो सकते? हम सुखी जीवन को क्यों नहीं अपना सकते? हमारा जीवन सुखी क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हम भयभीत हैं। भय क्यों आता है? गलत कार्य करने से। और अभी कौन गलत कार्य करेगा? तो सब भक्त हैं, सब लोग बेचारे है ना, फिर भी भय तो आता ही है ना।
हाँ बिल्कुल सही है।
जब व्यक्ति बहुत ही ज्यादा रागी हो जाता है, राग अर्थात अटैचमेंट, भयंकर आसक्त हो जाता है किसके प्रति, भौतिकता के प्रति। भौतिकता के प्रति हमारी आसक्ति प्रचंड हो जाती है, भयंकर हो जाती है। भौतिक विषय हो, भौतिक वस्तु हो, भौतिक व्यक्ति हो, भौतिक कर्म हो, वट एवर इज भौतिक, उस भौतिकता के प्रति जब हमारी आसक्ति अमर्याद हो जाती है, मर्यादा के बाहर हो जाती है, तब भयभीत होना शुरू हो जाता है, भय आना शुरू हो जाता है। और जब हम भयभीत होना शुरू हो जाते हैं तब हम कभी सुख का अनुभव नहीं करते। और इसी को कहा गया है रजोगुण। क्या कहा गया है? रजोगुण कहा गया है। आज तीसरे अध्याय में और विस्तृत चर्चा इसकी होगी। इसी को रजोगुण कहा गया है। और दुर्योधन जो है इधर रजोगुणी करता है, और रजोगुणी करता होने के कारण उनके पास भय है। रजोगुणी करता के कुछ लक्षण होते हैं। रजोगुणी करता बहुत रागी होता है, पहला लक्षण। रजोगुण में जो कार्य करता है ना, आप सबके विषय में हम नहीं बोल रहे हैं, आप जनरल व्याख्या कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे भक्त हैं। तो दुर्योधन जो है रजोगुणी व्यक्ति था, रजोगुणी करता था। रजोगुणी व्यक्ति के कुछ लक्षण है। पहला लक्षण है रागी अर्थात अमर्याद आसक्त। आसक्ति की कोई मर्यादा ही नहीं, टू मच अटैच्ड, बहुत ज्यादा आसक्त, रागी है। दूसरा है कर्म के फल के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त। जैसे मानो मैं कोई कर्म कर रहा हूं, तो कर्म कर रहा हूं तो मुझे तो उसका फल, अरे मिलना ही थी, क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा प्रश्न पूछते हैं बोलते हैं उनको, क्यों नहीं मिलेगा? जब हम कर्म कर रहे हैं तो फल क्यों नहीं मिलेगा? फल तो मिलना ही चाहिए, कंपल्सरी। लेकिन भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। बोलते हैं भगवान कर्म का तो आपका अधिकार है, आप कर्म करो वो आपका अधिकार है, लेकिन फल का डिपार्टमेंट तो मेरे पास है। उस डिपार्टमेंट में आप नहीं जा सकते। हम क्या कहते हैं? कर्म करना हो तो फल तो मिलना ही चाहिए। हाँ क्यों नहीं मिलेगा? मिलना ही चाहिए, वो मेरा अधिकार है। लेकिन भगवान कहेंगे आगे, कर्म के ऊपर आपका अधिकार है, फल मिलना नहीं मिलना यह आपके कर्म और धर्म संयोग से होगा। कर्म धर्म संयोग, नॉट ओनली कर्म। What you desire and what you deserve, आपकी इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार हम कर्म करते हैं। That is my desire. मैं अपने इच्छा के अनुसार कर्म करता हूं, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि मेरी इच्छा के अनुसार ही मुझे फल मिले। परंतु क्या मेरी योग्यता है? इच्छा तो बहुत है, योग्यता है क्या? हाँ योग्यता नहीं है तो नहीं प्राप्त होगा। जो लोग केवल इच्छा के आधारित कर्म फल से आसक्त तो हो जाते, इच्छा करते हैं कर्म करने की, वैसे कर्म करते हैं। उदाहरण है, मेरी इच्छा हो रही है अभी कि कार की कीमत बहुत कम हो गई, मुझे कार चाहिए, मर्सिडीज हो गई, इच्छा चाहिए कार। कर्म करूंगा ना, क्यों नहीं मिलेगी कार? मिलनी चाहिए। 2 महीना कर्म करूंगा, अब 2 महीने में मर्सिडीज कार मुझे लेने के लिए क्या कर्म करने पड़ेंगे? आप सोचिए, अब जो भी मैं कर्म करूंगा, मैं तो ये कह रहा हूं मैंने तो कर्म किया है, मुझे फल मिलना ही चाहिए। मेरे जेब में
25 लाख की गाड़ी है, 25,000 भी नहीं है।
आई डोंट डिजर्व, मेरे पास योग्यता नहीं है,
बट मेरे पास डिजायर है, इच्छा प्रसन्न है, भयंकर इच्छा है,
और इच्छा के अनुरूप मैं कर्म कर रहा हूं, योग्यता पता नहीं,
तो मुझे फल मिलेगा?
नहीं मिलेगा।
मिल भी गया, मान लो मैंने ऐसे तैसे इसकी टोपी उसके सर ऐसा काम किया, तो इच्छा के अनुसार मिलेगा, लेकिन बहुत सारे साइड इफेक्ट आ जाएंगे साथ में, बहुत सारी रिस्क हो जाएगी, है कि नहीं? परंतु मैं क्या हूं, मैं वो फल से अटैच हूं, मैं उस कार से अटैच हूं। सो दुर्योधन की यह स्थिति है, वेरी मच अटैच विथ कर्म फल, कर्म के फल से बहुत ज्यादा अटैच है। बल्कि होना क्या चाहिए, कर्म कैसे करने चाहिए, फल से अटैच होकर करना चाहिए कि कर्तव्य से अटैच होकर करना चाहिए? कर्तव्य, फल की चिंता, जब हम फल की चिंता करते हैं तो फल अर्थात जिसका अभी जन्म ही नहीं हुआ है उसकी विषय में हम सोच रहे हैं, फल तो अभी आया ही नहीं है ना, जिसका जन्म ही नहीं हुआ है उसके विषय में हम सोच रहे हैं। और कैसे सोचते हैं, जब कर्म करते वक्त हमारा मन फल के साथ चला जाता है, रिजल्ट के साथ चला जाता है, हमारी बुद्धि मन के साथ चली जाती है, हमारा शरीर एक्शन के साथ बैठा रहता है। कर्म करना अर्थात एक्शन, एक्शन कौन करता है? शरीर, शरीर से कर्म करेंगे ना, शरीर से कर्म करते हैं, परंतु जो मन है वो कहां चला जाता है? भविष्य में, फ्यूचर में चला जाता है। अभी मैं ऐसे कर्म कर रहा हूँ, अभी ऐसे कर्म कर रहा हूँ, फिर एक महीने बाद ये मिलेगा, फिर दो महीने बाद वो मिलेगा, फिर तीन महीने बाद वो मिलेगा, ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, और शरीर कहाँ है? 15 तारीख की जुलाई के 15 तारीख को इधर बैठा हुआ है, और मन कहाँ गया? अगस्त की 15 तारीख सितंबर की 15 तारीख अक्टूबर की 15 तारीख, और शरीर कहाँ है? जुलाई की 15 तारीख में। अब ये क्या हो रहा है, वो हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारा शरीर, इनमें भयंकर युद्ध हो रहा है, वो आगे खींच रहा है मन और बुद्धि, और शरीर तो 15 अगस्त नहीं कर सकता, 15 अगस्त पे आज शरीर नहीं जा सकता, शरीर तो इधर 15 जुलाई में रहेगा, आज की स्थिति में रहेगा, वर्तमान स्थिति में रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति जो अस्तित्व में ही नहीं है उसके प्रति आसक्त हो रहे हैं, और इसको एक सुंदर शब्द दिया गया है, इसको क्या कहते हैं? भ्रम, इल्यूजन। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं ना, भ्रमित रहते हैं हम, इसलिए शास्त्र कहते हैं। करना ये चाहिए कि हमारे मन को, हमारे बुद्धि को हमारे शरीर के साथ रखना चाहिए। जब हमारे शरीर के साथ हमारा मन और बुद्धि होगी, और उस समय जब हम कर्म करेंगे तो सक्सेस आएगा, परंतु होता उल्टा है। जो रागी होते हैं, जो राजसिक प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, उनका इस प्रकार का फॉर्मूला होता है, वे क्या करते हैं, कर्म फल से बहुत ज्यादा अटैच रहते हैं, वो चाहिए इधर बजे से। अब दुर्योधन को क्या चाहिए, दुर्योधन को संपूर्ण राज्य चाहिए, अर्थात चाहिए एट एनी कॉस्ट, उसके लिए कर्म कर रहा है, सोच रहा है कि ये कर्मों का फल तो वही होगा, मुझे पूरा राज्य मिल जाएगा, पर कर्म में उसका ध्यान नहीं है, फल में पूरा ध्यान लग गया है। तो राजसिक प्रवृत्ति होती है, तो कर्म फल की इच्छा करने वाला व्यक्ति यशस्वी नहीं हो सकता है। फिर तीसरा लक्षण होता है लोभ, जितना मिलता है उससे कभी संतुष्ट ही नहीं होता है व्यक्ति। मान लो मुझे मर्सिडीज मिल गई, तो अभी क्या चाहिए, अभी दूसरी कोई उसके उससे या दो मर्सिडीज चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। एक महीना हो गया कि उसके पश्चात अभी हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर से मन नहीं भर रहा, अभी क्या चाहिए, विमान चाहिए। अभी यहाँ कौन बैठेगा, यहाँ नहीं रहना, अभी कहाँ जाना है, उधर चंद्र सूर्य क्या कहाँ पे, वहां पे जाना है,
अर्थात लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास संतुष्टि नहीं है। लोभी व्यक्ति व्यक्ति कितना भी धनी होने दीजिए वो दरिद्र ही रहेगा। कितना भी धनी व्यक्ति हो यदि उसके पास लोभ है तो वो दरिद्र ही रहेगा, वो धनवान नहीं बनेगा, वो दरिद्र ही रहेगा। तो लोभ ये है, यही लोभ व्यक्ति के अंदर पाप को जन्म देता है, ये पाप का जन्मदाता है ना। तो ध्यान रखिए, यदि हमारे पास लोभ है तो उसका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोभ क्या करता है, पाप को जन्म देता है। कलेक्शन में लग जाते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, जो जो जिसके लिए हमारी योग्यता नहीं वो भी हमको चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, पाप करना पड़ेगा, सिंपल एक्टिविटी। सो लोभ पाप का जन्मदाता है, इसलिए इससे संभल के रहना है हमको। और इस लोभ में, लोभ के कारण जब पाप हमारे मन में आ जाता है और हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो हमारे अंदर क्रोध आ जाता है। देखिए कैसा पाप आ जाता है, पापी का, पाप का जन्मदाता क्यों है लोभ, क्योंकि लोभ है, मुझे ये चाहिए नहीं मिल रहा है, मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है तो मुझे क्या होगा, क्रोध आएगा। क्रोध इज वेरी डेंजरस नहीं। आज हम कई बार हम सुनते हैं, ऐसे हमारे मित्रों के यहाँ जाते हैं कई बार, या किसी से चर्चा होती है तो ये बात, कोई कोई व्यक्ति बड़े प्रेम से बड़े गर्व से कहता है, हमारे पास ये बात नहीं चलेगी कि हमारा स्वभाव बहुत गुस्सीला है, हमको बहुत गुस्सा आता है। और ये बात वो कैसे बताते हैं, मानो उनको राष्ट्रपति पदक मिल गया है, क्रोध ही है हमारा स्वभाव, बहुत बड़ा इनको मेडल मिल गया है। क्रोध ये तो वीकनेस है, और हम उसको कैसा प्रोजेक्ट करते हैं, स्ट्रेंथ। हम सोचते मेरा स्वभाव यदि क्रोध ही क्रोध पूर्ण है तो आई एम द बॉस, तो मैं बॉस हूं, यदि मुझे क्रोध नहीं आता है तो मैं क्या तुच्छ व्यक्ति हूं, यदि मुझे क्रोध आता है तो मैं बॉस हूं। सो क्रोध को हम इस प्रकार से समझते हैं, बट क्रोध वास्तविक में वास्तविकता देखा जाए तो क्रोध इज अ वीकनेस, एक सेकंड का पागलपन है क्रोध, अपना मैडनेस, लिटरली मैडनेस, नथिंग एल्स, लिटरली मैडनेस। बड़े बड़े पराक्रमी वीर शूर वीर राजे सब इस वस्तु इस क्रोध को नकारते हैं, क्रोध से व्यक्ति को पश्चाताप होता है। हमने कभी एक स्टोरी पढ़ी थी, कभी स्टोरी बुक में आपने भी सभी ने पढ़ी होगी, बस छोटे से थे तब पढ़ी थी स्टोरी। एक योद्धा था, मंगोलियन योद्धा था, चंगेज खान, पता है आपको स्टोरी, पता है था? वो बहुत डेयर डेविल जबरदस्त योद्धा पराक्रमी था मंगोलियन। वो जहां जिससे भी आक्रमण करता था वो विजयी यशस्वी हो जाता था। तो एक दिन वो अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकल पड़ा। उसकी एक विशेषता थी कि उसके पास एक पक्षी रहता था हमेशा, बाज, फाल्कन, बाज समझते ना, बाज हिंदी में बाज कहते हैं ना, फाल्कन, वो पक्षी उसका बहुत बड़ा फ्रेंड था। ये पक्षी की विशेषता है, वो किसी के साथ जब फ्रेंडशिप करता है तो उसके आसपास ही रहता है, वो या उसके हाथ पे बैठेगा या उसके कंधे पे बैठेगा, उसको छोड़ता नहीं, अपनी मित्रता को बहुत अच्छी तरह से निभाता है बाज। तो ये चंगेज खान का बहुत ही प्रिय मित्र था, बहुत वेरी गुड फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड, वो उसके कंधे पे हाथ पे बैठा रहता था। आज शिकार के लिए निकले और शिकार के लिए पूरा दिन भर घूम गए, पूरे जंगल को छान मारा, तो एक भी शिकार नहीं, अंततः थक गए, अभी क्या करें, थक गए। जब अपने टेंट में आके सब बैठे सैनिक और चंगेज खान वगैरह सब, तो चंगेज खान को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत क्रोधित हो गया, क्या पूरा दिन व्यर्थ में गया, एक शिकार नहीं कर पाया मैं, एक शिकार, बहुत उसको क्रोध आने लगा, बहुत क्रोधित हो गया। तो उसने क्या किया, सारे सैनिकों को कहा तुम इधर ही बैठो, मैं स्वयं जाऊंगा शिकार करने के लिए, और निकल पड़ा, साथ में बाघ को भी लेके गया। बाघ उसके कंधे पे था, बहुत समय तक घूमा फिरा कोई शिकार नहीं मिला। अब चंगेज खान को लग गई प्यास, क्योंकि इतना घूमा फिरा, ऊपर से क्रोध अनावर हो रहा है, और ज्यादा क्रोध आ रहा है, इतना बड़ा चंगेज खान उसको एक शिकार नहीं करते आ रही है, पकड़ते आ रही है, इस बात से बहुत परेशान था। आप देखिए यहाँ पे भी वो फल से बहुत अटैच था कि मुझे तो शिकार मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मैं तो घूम रहा हूं इतना दिन भर से, तो जिसके कारण उसको क्रोध आ गया, भयंकर क्रोध आ गया। फिर प्यास लग गई, जंगल में ढूंढता रहा पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, तब कहीं एक पहाड़ी छोटी सी पहाड़ी के नीचे उसको एक झरना दिखा, जहां से थोड़ा सा छोटी सी धार, पानी की धार नीचे उतर रही है। तो उसने सोचा चलो पानी प्यास तो बुझ जाएगी, वो पानी को पीने के लिए वहां तक गया, बाज पक्षी उसके पास ही था, उसने अपने पास एक कटोरे जैसा कटोरा जो था, जिसमें वो सब सब कुछ आयुध वगैरह रखते शस्त्रास्त्र, उसका वो नारियल का कटोरी कैसा होता है उतने ही था, इसका एक कटोरा था, वो निकाला और उसमें पानी लेने के लिए वो आगे बढ़ा। तो पानी लेने के लिए पानी भरा उसने, पानी भरते थे ये बाज ने क्या किया, वो कटोरे को उड़ा दिया। तो चंगेज खान सोचा जाने दो, पंछी है, पक्षी पंछी को क्या समझता है, कर देता है गलती, ठीक है कोई बात नहीं। उसने वो फिर से उठाया, उसको धोया, धार तो एकदम पतली सी धार थी, इसीलिए बहुत देर तक पकड़ के रखना पड़ रहा था। उसने फिर से उस कटोरे को रखा और फिर से पानी जमा करने का प्रयास किया। फिर वो आधा भरने के बाद फिर वो फाल्कन वो बाज आया, उसने फिर उसको उड़ा दिया। अब इस बार ये बहुत क्रोधित हो गया, भयंकर क्रोध आया। अब इसने क्या किया, अपने एक हाथ में तलवार निकाली और एक हाथ में कटोरी लिया और पानी को जमा कर रहा है, आधा भर गया है, बाद में देखिए बाद तुरंत उसको गिराने के लिए जैसे ही आया वैसे ही उसने इसने क्या किया, बाद के ऊपर तलवार से वार कर दिया। बाद भयंकर घायल हो गया, फिर भी उड़ते उड़ते ऊपर जाके गिर गया, ऊपर की ओर पहाड़ की ओर जाके गिर गया। अब पानी गिरना बंद हो गया, पानी गिरना बंद होने से इसको ऐसे लगा चंगेज खान को कि ऊपर पानी का स्रोत है, मैं क्यों न चल के पानी पी लूं, इसलिए ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ा। पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के पश्चात उसको जल का स्रोत दिख गया, जहां से पानी आ रहा था नीचे, उसने वो जल का स्रोत दिखा, लेकिन उसके अंदर बहुत ही जहरीला सांप मरा हुआ था उस पानी। और ये चंगेज खान उस जहरीले पानी को पीने वाला, और ये जो बाघ है, ये जो फाल्कन पक्षी है, ये जानता था। अंततः इसने क्या किया, जब चंगेज खान सुनता ही नहीं है, वार कर दिया, तब भी ये पक्षी ने क्या किया, ऊपर समहा उड़ते उड़ते गया और जिस छेद से पानी गिर रहा था वहां जाके बैठ गया, अपने पंख पसार दिए ताकि पानी नीचे न गिरे। और जब चंगेज खान ने ये देखा
तो इतना बड़ा पराक्रम, इतना बड़ा वीर योद्धा रोने लगा।
फिर उस बाज का तो मृत्यु हो गया, परंतु चंगेज खान ने उस जगह पे बाज का एक स्वर्ण का मूर्ति, सोने का मूर्ति बना दिया और उस बाज के पंख से, पंख पे उसने दो बातें लिखी, एक पंख पे एक बात लिखी और दूसरे पंख पे एक बात लिखी सोने के सुवर्ण अक्षर। उसने क्या लिखा, क्रोध में जो भी कार्य करते हैं वो विध्वंस की ओर ही ले जाते हैं। पहली बात, क्रोध में जो भी कार्य हम करते हैं वो क्या करते हैं, विध्वंस की ओर ही ले जाते हैं। ये सब आप कितना भी बड़ा कार्य क्यों न कर रहे हो, परंतु आपके अंदर क्रोध है, कितने भी बड़े व्यक्ति हो परंतु क्रोध है, कितने भी समझदारी से आप समाज में पेश आते हो परंतु क्रोध करते हो घर में या कहीं पे भी, ये विध्वंस का लक्षण है। क्रोध में जो भी निर्णय लिया जाता है, क्रोध में जो भी कार्य क्रिया किए जाते हैं उसका अंत विध्वंस में होता है, नाश। और हम क्रोध को अपनी शक्ति मानते हैं, नहीं, क्रोध को क्या समझते हैं, आई एम पावरफुल बिकॉज मैं क्रोधित हो जाता हूं, मैं गुस्सा वाला हूं, हमको गुस्सा आता है, परंतु क्रोध में किया हुआ कोई भी कार्य विध्वंस की ओर ले जाता है। एक बात लिखी और दूसरी बात उन्होंने लिखी, हित चिंतक यदि हमारा कोई है, हित चिंतक जो भी है वो किसी भी अवस्था में हित चिंतक ही रहता है, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो चाहे कोई परिस्थिति हो, हित चिंतक नित्य हमारा हित चिंतन ही रहता है, चाहे आप उसके ऊपर विश्वास करो चाहे आप उसके ऊपर विश्वास न करो। जो हमारे वेल विशर्स होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, सखा होते हैं, वो हमारे हित चिंतक ही होते हैं, सखा ही होते हैं, मित्र ही होते हैं इन एनी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति। क्रोध वेरी डेंजरस, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध में निर्णय लिया चंगेज खान ने, हम भी क्रोध में बहुत सारे निर्णय लेते हैं, क्रोध में ही कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि क्रोध में हम कई अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे व्यक्ति को, अच्छे अच्छे मित्रों से दूर हो जाते हैं क्रोध के कारण। मित्रों के मन में कुछ हमारे विषय में कुछ दूजा भाव उत्पन्न कर देते हैं क्रोध के कारण, हमारे अपनों से हम स्वयं दूर हो जाते हैं क्रोध के कारण। तो क्रोध को दूर कर दीजिए, मित्रों को नहीं, मनुष्य को नहीं, क्रोध को दूर कीजिए। किसी मनुष्य के प्रति क्रोध आता है तो पहले अपने क्रोध को दूर कर दीजिए, उस मनुष्य को नहीं। सोचिए, थोड़ा विचार कीजिए, क्रोध की आवश्यकता नहीं है। एवं किसी को कोई शिक्षा भी करनी है तब भी क्रोध को नहीं, क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वस्तुतः क्रोध करने से आप शिक्षा कर ही नहीं सकते। क्रोध तो हमारा वीकनेस है, वो तो हमारी दुर्बलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्रोधित होना है कि हमारा लक्ष्य सुख शांति है? तो क्रोध से सुख शांति कैसे आएगी? जो हमारा लक्ष्य ही नहीं है उसको हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं, क्यों स्वीकार करते हैं, क्यों अपनाते हैं, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है सुख और शांति, तो हमें सुख और शांति के लिए प्रयास करना चाहिए। और यदि हमारे अंदर लोभ है, हमारे अंदर आसक्ति है, तो उसके लिए साधना करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, है ना, एसोसिएशन रखना चाहिए, मन को शांत स्टेबल रखना चाहिए, बुद्धि को सात्विक रखना चाहिए, शरीर को निरोगी रखना चाहिए, पहले ये कार्य करना चाहिए, है ना। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोष से अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। संतोष से
अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। दुर्योधन के पास यही तो नहीं था,
संतोष नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं, संतोष नहीं है, इसलिए क्या है, लोभ है। लोभ है, इसके कारण क्या हुआ, आसक्ति आ गई। आसक्ति के कारण क्या हुआ, भय उत्पन्न हुआ। जब भय उत्पन्न हुआ तो सुख की तो कोई प्रश्न ही नहीं, सुख नहीं होगा। सुभयजित व्यक्ति के पास सुख नहीं होता, संतुष्ट होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। लड्डू कितने भी अच्छे हो, रसगुल्ले कितने भी अच्छे हो, कितने खाएंगे, लड्डू बहुत अच्छे हैं, 100 लड्डू खा लेंगे, बहुत अच्छे हैं। पेट भरना तो ठीक है, परंतु मन भरना चाहिए, मन संतुष्ट होना चाहिए। पेट तो भर ही जाता है, परंतु कभी कभी मन नहीं भरता है तो चलते रहता है, चलते रहता है, फिर क्या होता है, फल क्या होता है, हम सब जानते हैं फल क्या होता है, सबको अनुभव है ना। कोई कोई ऐसी वस्तु है जो हमने खाना नहीं, इसके पर हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, देखिए सबको पता है शरीर के लिए बहुत घातक है, पूरे बंबई में डेंगू फैल रहा है फिर भी जो रोड साइड स्टॉल्स है उनका बहुत ज्यादा सेल हो रहा है, क्यों, सब जानते नहीं है क्या, सब जानते हैं प्रभु जी, फिर क्यों ऐसे हो रहा है। हमारे तो ये इस देश की तो इतनी विशेषता है कि हमारा फूड स्टॉक्स, खान पान की वस्तुएं हमको गटर के साथ, गटर के ऊपर मिलती है, और पैर में पहनने की जूते चप्पल ऐसी दुकान में मिलती है, ऐसा है। अब जो है तो है, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा, परंतु कहने की विशेष बात यह है कि हमारा मन जो है वो संतुष्ट नहीं है, इसीलिए यह सब हो रहा है। पेट तो संतुष्ट हो जाता है, दाल चावल सब्जी रोटी खा लो, पेट संतुष्ट हो जाता है, लेकिन मन संतुष्ट नहीं होता है, तो वो बोलता है अरे प्रभु जी अभी गरम गरम पकौड़े होने चाहिए, चाइनीज होना चाहिए, वो रोड साइड पे बहुत अच्छा स्टॉल लगा हुआ है, मन बोलता है, मन संतुष्ट नहीं होता है, शरीर एक बार कह जाएगा बस, परंतु मन नहीं कहेगा। मन संतुष्ट होना चाहिए, वह सुख का बहुत बड़ा कारण है। यदि हम सुखी होना चाहते हैं तो मन को संतुष्टि आवश्यक है। अच्छा ठीक बात है, हम सुख चाहते भी है, तो हमारी समस्या दूसरी ये है कि हमने उसको ढूंढना कहाँ चाहिए, जहां ढूंढना चाहिए वहां तो ढूंढते ही नहीं है। सुख की चाहत, वी वॉन्ट हैप्पी लाइफ, एवरीबडी वॉन्ट, हम तो पहले इंट्रोडक्शन के लेक्चर से यही बोल रहे हैं, है ना, सभी को हैप्पी लाइफ चाहिए। कहां मिलता है प्रभु जी, कहीं तो मिलता होगा ना, कहां मिलता है, कहीं तो मिलता होगा, इसलिए तो हमको चाहिए, सबको हैप्पीनेस चाहिए, मिलता कहां है ये तो समझते हैं, पता ही नहीं चलता है, सब ट्राई कर रहे हैं, कौन कहां ट्राई करता है, कोई गैम्बलिंग करके वो सोचता है कि मुझे हैप्पी लाइफ मिलेगा, कोई मांसाहार करके सोचता है कि आई विल बी हैप्पी, कोई मद्यपान करके सोचता है कि आई विल बी हैप्पी, कोई जुआ खेल के सोचता है कि मैं हैप्पी हो जाऊंगा, कोई चीटिंग करके सोचता है कि मैं हैप्पी हो जाऊंगा, कोई पॉलिटिक्स करके सोचता है कि मैं हैप्पी हो जाऊंगा। देखिए कहां कहां ढूंढ रहे हैप्पीनेस, नहीं, कितनी जगह पे हम सुख को ढूंढ रहे। एक व्यक्ति था हमारे मुंबई के चौपाटी पे बैठा था, ऐसी चौपाटी पे घूमने गया जैसे हम जाते हैं, और चौपाटी पे बैठा था, समुन्द्र के किनारे लहरों को गिन रहा था, ऐसे ही अचानक उसको समुद्र में हीरा दिख गया, उसने क्या किया, जो हम करते यदि हम होते तो हम भी वही करते, उसने क्या किया, हीरे को पकड़ने के लिए छलांग लगा दी और ढूंढ रहा है, बहुत देर तक ढूंढा 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 नहीं मिला, फिर वापिस आया, बैठ गया अपनी जगह पे। अब इधर उधर देखा, फिर वहां पे नजर गई उसकी, फिर हीरा दिख गया, अरे
हीरा मुझे मिल जाएगा तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। उसने फिर जंप कर दिया, फिर ढूंढा 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 ढूंढा, हैरान हो गया, फिर वापिस आ गया, फिर पत्थर पे बैठ गया, फिर देखने लगा, फिर देखा रहे और हीरा दिख ही रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। फिर छलांग लगाई, फिर हाथ में हीरा नहीं है, फिर वापिस आ गया। उसके बाद ही नहीं, थोड़े अंतर पे एक हमारे इस्कॉन के भक्त बैठे थे, वो ये सब मजा देख रहे थे, तो वो भक्त से रहा नहीं गया। अब वो उनको पूछे, भाई साहब आप क्या क्या कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? बोले हाँ हाँ हाँ। तो भक्त बोले मुझे पता है आप क्या ढूंढ रहे हैं। बोले अच्छा, हाँ आप हीरा ढूंढ रहे हो ना? बोले बोले हाँ, बराबर पूछा, मैं हीरा ही ढूंढ रहा हूं। तो हीरा कहाँ ढूंढ रहे? बोले प्रभु आप वहां थोड़े ना हीरा है, ये जो किनारे पे ये जो नारियल का पेड़ खड़ा है ना, इस नारियल के पेड़ के टॉप पे वो हीरा रखा हुआ है, उसकी परछाई इधर समुद्र में पानी में गिर रही है। आपको हीरा चाहिए तो यू वांट टू बी हैप्पी, आपको सुख चाहिए तो हीरा यहाँ ढूंढ रहे आप, जो यहाँ तो परछाई है केवल। सत्य का हीरा, सही हीरा आपको चाहिए तो पेड़ पे चढ़ना होगा। पेड़ पे चढ़ के टॉप पे वो हीरा रखा हुआ है, वो हीरे को प्राप्त करना होगा, लेकिन उसके लिए आपको चढ़ना पेड़ पे होगा। आप गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, इतना इतना कष्ट कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, सुख को प्राप्त करने के लिए मेहनत कष्ट बहुत कर रहे हैं। ये नहीं कि आलसी की तरह बने, नहीं नहीं नहीं, सुबह से 6 बजे से निकलते हैं घर से, प्रभु जी 7 बजे निकल जाते हैं, रात को 10 बजे घर जाते हैं, उसके पहले पॉसिबल नहीं है कि मेहनत कम नहीं कर रहे हम, फिर सुख चैन नहीं है, समाधान नहीं है, संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत दिशा हो रही है। जहां हमने चढ़ के ढूंढना चाहिए वहां चढ़ नहीं रहे। तो उस पेड़ पे चढ़ना और साधना, सत्संग, श्रवण, कीर्तन, नाम जप, भगवत भाव, आध्यात्मिक सेवाएं, साधना, उस पेड़ पे वो चढ़ेगा तो उसको कष्ट साधना कर, उसको साधना कहा गया। वो साधना था क्या? आप लोग यहां तक आते हैं, विशेष बातें साधना है, आप हीरे की तलाश कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में, हीरा मिल जाएगा, हैप्पी लाइफ हो जाएगा, डोंट वरी। है ना? तो हीरा राइट डायरेक्शन में जाके ढूंढना चाहिए। वो डायरेक्शन किसने बताई प्रभु? किसने बताई? भक्त ने बताई वो डायरेक्शन। भक्त ने क्यों बताई? उसको पता है हीरा कहाँ है, उसको पता है हाउ वी कैन मेक अवर लाइफ हैप्पी, अपना जीवन हम हैप्पी कैसे कर सकते हैं, ये भक्त को पता है, इसलिए भक्त ने बताया बरोबर हीरा वहां पे है भाई, आप मेहनत कर रहे हैं व्यर्थ की। तो पेड़ पे चढ़ना ये क्या है? पेड़ पे चढ़ना यह साधना है। साध्य क्या है? साध्य क्या करना चाहते हैं? हैप्पीनेस, आनंद, आनंद चाहिए हमको, हैप्पी चाहिए, जस्ट हमको सुख नहीं चाहिए। सुख के पीछे तो मैंने कहा था पहले ही प्रवचन में, पहले ही इंट्रोडक्शन में, सुख पैकेट में ही मिलता है, सुख अकेला नहीं मिलता है, वो पैकेट में लेना पड़ता है। पैकेट उसके साथ क्या लेना पड़ता है? हा? क्या दुख? सुख के साथ डिस्काउंट में फ्री, सुख के साथ सुख लेना ही पड़ता है, दुख के साथ सुख आएगा ही आएगा। यदि दुखी है आप तो सुख आएगा, डोंट वरी, क्योंकि कोई भी स्थिति संसार में एक जैसी नहीं रह सकती, और यदि सुखी है तो डोंट वरी, देयर बी अ टेस्टिंग टाइम, परीक्षा की घड़ी होगी, कुछ ना कुछ परीक्षा होगी, तैयारी रहनी चाहिए, ये तो मनुष्य जीवन है, वी आर ऑलवेज प्रिपेयर, ऑलवेज प्रिपेयर, है ना? तो सुख और सुख हमको इसके ऊपर चाहिए, इसमें नहीं अटकना है, हमको इसके ऊपर चढ़ना है। इसके ऊपर क्या है? आनंद, आनंद चाहिए। और वो आनंद कैसे प्राप्त होगा?
चाहिए, राइट डायरेक्शन में चढ़ना होगा। वो डायरेक्शन हमको कौन बता सकते हैं? भक्त, भक्त अर्थात साधु गुरु शास्त्र, इन्हीं से हमको डायरेक्शन मिलेगी। और उस डायरेक्शन को हम स्वीकार करेंगे, साधना करेंगे, प्रयासरत रहेंगे, प्रयासरत रहेंगे तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमने कौन सा लक्षण देखा? लोभ, तीन लक्षण देखे हैं राजसिक कर्ता के। रूपा जी महाराज ने तात्पर्य में कहा है दुर्योधन के विषय में कि दुर्योधन किस प्रकार से करता है, किस प्रकार से कर्म करता है। दुर्योधन कैसा है? आतताई है। दुर्योधन राजसिक करता है। राजसिक कर्ता के लक्षण हमने देखे हैं, राजी होता है, दूसरा कर्म फल की इच्छा करने वाला होता है, तीसरा लोभी होता है और चौथा हिंसा करने वाला होता है। इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन फाइटिंग, हिंसा। अब हिंसा किसको किसको कहते हैं? प्रभुपाद जी महाराज को किसी ने भगवत गीता पे ही यह प्रश्न पूछा था कि भगवत गीता में भी तो हिंसा है। आजकल आपने देखा होगा बहुत लोगों किसी का जबरदस्ती किसी को प्रसिद्ध करते रहते हैं, वो किधर किधर कोई ग्रुप में भेजते रहते हैं ऐसे मूर्ख लोगों के क्लिप्स जो गीता के ऊपर कुछ भी वो बोलते फिरते हैं अज्ञानी ऐसे लोगों के। तो ये हिंसा का अर्थ क्या है? ऐसे सब लोग भगवत गीता को कहते हैं ये हिंसा का ग्रंथ है, इसमें हिंसा सिखाई गई। तो गोपाल जी महाराज ने सुंदर उत्तर दिया है, धर्म की रक्षा करने के लिए जो हिंसा की जाती है वो अहिंसा है। क्या? धर्म रक्षण के लिए जो हिंसा की जाती है, अधर्मियों को मारा जाता है, वो क्या है? अहिंसा है। क्योंकि आपने अल्टीमेटली क्या किया? रक्षण किया। किसका रक्षण किया? धर्म का रक्षण किया, वो अहिंसा है। और अधर्म के साथ रह के जो हिंसा की जाती है वह हिंसा है। सो जो राजसिक कर्ता होता है वो हिंसक होता है प्रवृत्ति से। और पांचवा अवगुण उसमें होता है राजसिक कर्ता में, अपवित्रता, अपवित्र होता है। अपवित्र होता है अर्थात मन से बड़ा अपवित्र होता है, इम्प्योर माई माइंड, काक दृष्टि। काक दृष्टि पता है आपको? काक यानी कौवा। आपने कभी देखा कौवा कैसे देखता है? नहीं, टेढ़ी आंख से देखते हैं। आपको लगा होगा ये हमारे वो तो थोड़ी ना देख रहा है, तो उधर देख रहा है, परंतु वो हमारी ओर देखता है। ये अपवित्रता है, दूसरों के वस्तुओं पे, विषयों पे, व्यक्तियों पे नजर रखना। दूसरों के पास जो है वो हमारे पास होना ही चाहिए और उसको प्राप्त करने के लिए 19-20 जो भी है सब करना, काक दृष्टि, बुरी नजर, इसको मन की अपवित्रता बोलते हैं। माइंड इज इंप्योर, मन अपवित्र है। ये राजनीतिक कर्ता का लक्षण है अपवित्रता, यार इंप्योर। मन, बुद्धि, इंद्रिया और खान पान, इसमें जो भी व्यक्ति अपवित्र होते हैं उनको राजसिक कर्ता कहते हैं। किसने? मन, बुद्धि और खान पान। मनुष्य है, मनुष्य ने कहीं भी कुछ भी नहीं खाना चाहिए, वो तो जानवरों का काम है। जानवर कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, उनको कुछ डेंगू वगैरह भी नहीं होता है, क्योंकि उनको कोई उनका सिस्टम ऐसा ही बना हुआ है। हम ऐसा करते हैं जानवर की जैसा, तो फिर हमको वैक्सीनेशन करना पड़ता है। आज इस पृथ्वी पे जितनी औषधियां और जितना मेडिकल रिसर्च हो रहा है आज की स्थिति में, उतना पृथ्वी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उतनी औषधियां पूरी पृथ्वी के इतिहास में पहले कभी उपलब्ध नहीं थी, आज इतनी औषधियां उपलब्ध है। परंतु समस्या ये कि आज रोग भी इतने हैं कि पृथ्वी की इतिहास में पहले कभी इतने रोग नहीं थे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि खान पान में अपवित्रता है, मन में अपवित्रता है,
मन भी अशुद्ध, इंद्रिया भी अशुद्ध और खान पान भी अशुद्ध। तो ये राजसिक व्यक्ति के, राजसिक कर्ता के लक्षण होते हैं। और लास्ट गुण अवगुण, लास्ट जो है छठवां राजसिक कर्ता का लक्षण, वो है यह हर्ष तथा शोक में डूबा हुआ रहता है। एक्सट्रीम इंडिया पाकिस्तान मैच में भी इंडिया जीत गया तो रात को 2 बजे पूरा बारूद से बम्बई उड़ा देंगे, सब पुलिस कर देंगे, नाचेंगे कूदेंगे, खूब मद्यपान करेंगे और आपस में लड़ भिड़ेंगे। इतना हर्ष हुआ है एक्सट्रीम। और यदि हार गया तो घर का टीवी उठा के रास्ते पे लाके फोड़ देंगे, कभी किसी को मार देंगे, क्योंकि हन हो गई, दुख हुआ है, शोक हुआ है। तो जो हर्ष में भी डूब जाते हैं, शोक में भी डूब जाते हैं, ये राजनीतिक करता है। हमने बैलेंस, हमको एक्सट्रीम होने की आवश्यकता नहीं है, हमको बहुत ही ज्यादा हर्षित होने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने एक बात रूपा जी ने जो बात बार बार कही है, वही बात कौन सी? चलतित्तम चलतवित्तम चंचलम इदम सर्वम, सब कुछ चंचल है। आज ये जीता तो कल वो जीतेगा, कल वो जीता तो परसों को कोई तीसरा जीतेगा। आज सुख है तो कल शायद दुख होगा, आज दुख है तो कल शायद सुख होगा, नोबडी नोज। क्योंकि चलतित्तम चलतवित्तम चंचलम इदम सर्वम, सब कुछ कैसा चंचल है। इन संपूर्ण चंचलता में हमको स्थिर रहना है, क्योंकि हमको पता है ना सब चंचल है, तो हम क्यों चंचल हो जाते हैं? जब हमको पता है कि एवरीथिंग इज अनसर्टन, एवरीथिंग इज अनस्टेबल, एवरीथिंग इज नॉट रिलायबल, हमको पता है ना, फिर भी हम क्या सोचते हैं? नहीं, मैं जो चाह रहा हूं, मुझे जो चाहिए वो सर्टन है, वो रिलायबल है, वो नित्य के लिए है, वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इल्यूजन। एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि ये सब चंचल है और एनीथिंग कैन हैपन एनीवेयर। उस परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है, हमको बहुत खुशी होने की आवश्यकता है ही नहीं। और हमको एक्सट्रीम एक्साइट हर्ष होने की आवश्यकता नहीं, न शोक करने की आवश्यकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। जो ऐसी ये जो लक्षण जिसके पास है वो राजसिक करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे पता है आप सभी के पास इसमें से कुछ भी नहीं है। अब मैं प्रार्थना करता हूँ संपूर्ण गुरु परंपरा को, गौर निताई को, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी और श्री राधा गिरधारी जी को, कि इसमें से कोई भी लक्षण हमारे अंदर कभी ना आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यदि थोड़ा प्रयास हमको करना पड़े तो करना चाहिए, छोटा सा प्रयास होता है। आपने जो भी भगवान की माला जब हम करते हैं संकल्प करके, या अपने भाव से भक्ति भाव से, कोई 16 करता है, कोई 32 करता है, कोई 4 करता है, कोई 2 करता है, कोई 1 करता है, कोई कुछ भी नहीं करता है तो समस्या है। तो कुछ करे, जिसके पास मालाएं नहीं है जप मालाएं, वो बाहर काउंटर पे अपना नाम लिख दे, हम आपको नेक्स्ट क्लास में मालाएं देंगे, बीड बैग के साथ माला देंगे, और वो माला का जप करेंगे आप तो ये लक्षण हमारे पास में भी नहीं आ सकते, है ना। सो जिसके पास माला जप नहीं है, माला नहीं है जप माला, वो अपना नाम लिखे, नाम लिखेंगे तो ये मिलेगा। क्योंकि उतने ही हम नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे जप और माला। जिसके पास नहीं हुआ अवश्य लिखे, क्योंकि हमको दुर्योधन थोड़ी ना बनना है, हमको दुर्योधन नहीं बनना है। ये राजसिक लक्षण हमको नहीं चाहिए, हमको सात्विक लक्षण चाहिए, हमको
प्रेमा भक्ति में जो लक्षण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वो लक्षणों को हमको प्राप्त करना है। हमको सुख चाहिए नहीं, हमको आनंद चाहिए। आनंद भगवान ही दे सकते हैं क्योंकि भगवान ही सच्चिदानंद घन है। सच्चिदानंद घन कौन है? भगवान है। जिसके पास जो है वही तो वो देगा। भगवान के पास ही आनंद है तो वही हमको आनंद दे सकते हैं। बाकी आनंद संसार के पास नहीं, सुख है, आनंद भगवान के पास है। तो भगवान को हम रोज प्रार्थना करेंगे केवल उनके नाम के उच्चारण के द्वारा, तो ये सब लक्षणों से हमारा रक्षण हो सकता है। इसलिए सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जिसके भी पास जप माला नहीं है, किसके किसके पास नहीं है, हाथ ऊपर कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी 6-7 भक्त यहाँ पे है उपस्थित, कृपा करके अपना नाम पीछे दीजिएगा। आप नेक्स्ट टाइम आएंगे, नेक्स्ट रविवार को, नेक्स्ट अर्थात 29 या 30 को है, 29 को आ रहा है, फिफ्थ सैटरडे इस मंथ में है, तो फिफ्थ सैटरडे को क्लास है। तो आप फिफ्थ सैटरडे को जब आओगे तो आपको निश्चित ही माला मिल जाएगी जप माला। तो आप अपना नाम अवश्य लिख लीजिए। 29 को जो क्लास होगा उस क्लास के दौरान ही हम आपको जप माला देंगे, लेकिन आपका नाम जिसके पास नहीं है वो लिख दीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पांच मिनट और है, एक श्लोक पूरा करते हैं 5 मिनट में, क्योंकि श्लोक बहुत छोटा है, उसमें तात्पर्य ही नहीं है, केवल ट्रांसलेशन है। तो हम केवल उसको पढ़ते हैं और 5 मिनट शायद होगा। 1.13 पहले अध्याय का 13वां श्लोक। तत शंखाच भैर्यश्च पणवा नख गोमुखः स्वसैव्याप्य हन्यन्त स्वशब्दस्तुमलोभवत्। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह तथा एक साथ बज उठे, वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। सो तत्पश्चात क्या हुआ? तत्पश्चात ढोल नगाड़े तुरही सब जोर जोर से बजने लगा, एक साथ कोलाहल हो गया है। ऐसा इसमें कहा है, इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं दिया है। तो हमने देखा कि धृतराष्ट्र के पहले अध्याय के पहले श्लोक में 2 प्रश्न थे। कौन से प्रश्न थे? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धव मामका पांडवाश्चय किम अकुर्वत संजय। 2 प्रश्न है, एक प्रश्न है मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, दूसरा प्रश्न है पांडव क्या कर रहे हैं। 2 प्रश्न है। सो पहले प्रश्न के पहला जो उत्तर है कि मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, मतलब कौरव क्या कर रहे हैं, तो उसका भी उत्तर हमको लगभग समझ में आया कि कौरव क्या कर रहे हैं, तो भीष्म पितामह ने शंख बजाया है। अब पांडव क्या कर रहे हैं उसका उत्तर नेक्स्ट श्लोक में है, 1.14, जो हमने पढ़ा तो सही आज, परंतु उसकी चर्चा 29 को होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न पूछ सकते हैं, 1 question only। कोई प्रश्न नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।